प्यारे साथियों नमस्कार। आज 23 अगस्त 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं संदीप सिसोदिया, आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, धीरज विश्वकर्मा नसरुल्लागंज से हैं, सौरभ वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, आकाश शर्मा आप लखीमपुर उत्तर प्रदेश से हैं और दिवेश कुमार सीतामढ़ी बिहार से हैं। तो संदीप, धीरज, सौरभ, आकाश और दिवेश आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों इसी के साथ ही मैं आप सब की ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं नवीन तिवारी को जो रानीखेत उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने मेल द्वारा सूचित किया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से उनका चयन राजस्व विभाग में अतिरिक्त सहायक के पद के लिए हो गया है और इसमें उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो नवीन हम सब की ओर से आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और भविष्य के लिए बहुत बहुत बड़ी अच्छी और पवित्र शुभकामनाएं। मित्रों एक छोटी सी सूचना है, कई मेल कुछ मेल इस तरह के आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने जो फिफ्थ बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने जानना चाहा है कि जब वो अपना एडमिशन फॉर्म भर देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका एडमिशन फॉर्म एकेडमी को मिल गया है या नहीं मिल गया है। मित्रों ये बहुत आसान है, जब आप एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए गए एडमिशन के फॉर्म को भर देते हैं तो इसके बाद फिर एक सबमिट का बटन आपको मिलता है और जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड आर नॉट। आपको लिखा हुआ जब आ जाता है कि योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म एकेडमी के पास पहुंच चुका है। तो मित्रों इसके यही एक सूचना का तरीका है, तो आप बस यह है कि सावधानी के साथ भरें और भरने के बाद फिर उस सबमिट वाले बटन को दबा दें, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो ठीक है या नहीं है। दोस्तों अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर और आज के AIR न्यूज में बात करने के लिए चूंकि हमारे पास काफी कम है इसीलिए आज हम थोड़ा सा जो प्री के एग्जाम हुए हैं उस पर थोड़ी सी ज्यादा बातें करेंगे। मुख्य न्यूज में मित्रों खेल पुरस्कार ही हैं, खेल से जुड़े हुए जो पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार ने की है उनसे जुड़ी हुई खबरें आपने डिटेल्स में पढ़ी। मैं इसमें से खासकर जो खेल रत्न पुरस्कार है उसकी विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि ये पहली बार है जब हमारे देश ने एक साथ ही 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया है जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये 4 खिलाड़ियां जो हमारे खिलाड़ी हैं वे हैं मित्रों पीवी सिंधु, आप जानते हैं इन्हें, इनके नाम से अब बहुत अच्छे तरह से परिचित हो चुके हैं। दूसरी हैं साक्षी मलिक, इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरी हैं दीपा कर्माकर, इनको भी अच्छे से जान ही रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि दीपा कर्माकर मूलतः जिमनास्ट हैं। और चौथे खिलाड़ी हैं जीतू राय जो शूटर हैं। तो इन 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है, खेल का सम्मान है, देने की घोषणा की गई है। मित्रों तो मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से एकेडमी की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और सच पूछिए तो ये उम्मीद भी करता हूं कि इन खिलाड़ियों की सफलता सच हमारे पूरे के पूरे देशवासियों को और खासकर यंग जनरेशन को तो बहुत ही अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी ही। इसी के साथ ही खबर थी मित्रों, आपको मालूम है कि 6 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वो खासकर जो खेल के जो कोच होते हैं उनको दिए जाते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं जो खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। मित्रों, जहां तक सिविल सर्विस में इन के बारे में पूछे जाने का सवाल है, मुझे लगता है कि खेल रत्न पुरस्कार जो 4 खिलाड़ियों को मिले हैं, थोड़ी सी संभावना बन सकती है कि उन पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। मैं थोड़ी सी संभावना की ही बात कर रहा हूं। तो इन खिलाड़ियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये किन किन खेलों से संबंधित हैं। बेहतर होगा कि आप इनके स्टेट्स के बारे में भी जानें और थोड़ा सा इनका जो कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है, क्योंकि बट नेचुरल की कंट्रीब्यूशन रहा है तभी खेल रत्न सम्मान दिया गया है, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी आप जान लेंगे तो मेरी समझ से सफिशियंट होगा। जहां तक द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार का संबंध है मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि खासकर जो जिन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है वे किस राज्य के हैं, तो उन राज्य के जो स्टेट सिविल सर्विसेज होंगे या जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होंगे उस लिहाज से वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, यहां मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे इवेंट के दौरान यानी रियो ओलंपिक के दौरान कुछ ऐसे कोच रहे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं, जिनका नाम बहुत बार आया और नो डाउट कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो नाम आया है कोच में मित्रों, वो गोपीचंद पुलेला का है, खास जो पीवी संधु के कोच रहे हैं और उन्हीं के एकेडमी में पीवी संधु अपनी प्रैक्टिस भी कर रही है और शुरू से लेकर आखिरी तक वो उनसे जुड़ी हुई हैं। साइना नेहवाल भी गोपीचंद की ही शिष्या रही हैं, तो उनके आप एकेडमी से कह लीजिए कि 2 खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लेने वाले निकल चुके हैं, बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और खासकर गुरु शिष्य की इस परंपरा को लेकर के NDTV के लिए मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने उसको पढ़ा हो। तो खासकर गोपीचंद जो पुलेला हैं उनका नाम भी थोड़ा सा आपको स्पेशली मालूम होना चाहिए, और ये सब के लिए है, किसी स्टेट विशेष के लिए नहीं। तो मित्रों, खेल से इतना ही, और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो रियो ओलंपिक है अब इसकी समीक्षा अलग अलग तरीके से होनी शुरू हो गई है, लोग अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन देंगे, खासकर कि भारत को क्या करना चाहिए। मित्रों, इसको लेकर के एक हिंदुस्तान जो दैनिक हिंदुस्तान है, हिंदी का अखबार है, उसमें एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट आया है और उसका शीर्षक उन्होंने दिया है प्रकृति की देन। स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस एडिटोरियल कमेंट में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर कंट्रीज या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किसी पर्टिकुलर इवेंट के ही खिलाड़ी ज्यादा निकलते हैं। जैसे उन्होंने एशिया के बारे में बात की, तो एशिया में ऐसे खिलाड़ी ज्यादा निकलते हैं जिनमें फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत हो, जैसे जिमनास्ट वगैरह हुए, बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, तो इसमें शरीर का लचकदार होना बहुत मायने रखता है, उस प्राइमरी क्वालिटी होनी चाहिए खिलाड़ी में, तो वहां से ऐसे लोग निकलते हैं। फिर वो यूरोपीय देशों को लेकर के चलते हैं, तो वहां से थोड़े से हट्टे कट्टे हैमर थ्रो और जेवेलियन और वेट लिफ्टिंग, उन क्षेत्रों में वो लोग आगे होते हैं। जो अफ्रीका के लोग होते हैं खासकर अश्वेत, वो खासकर एथलीट में दौड़ में उनका बड़ा दबदबा होता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीजें इसमें बताई हैं कि ये अभी तक के जो रिजल्ट्स रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए और उसके आधार पर आप हो सकता है कि अपने उत्तर देने में सटीक तरीके से तार्किक इस्तेमाल कर सके। तो मित्रों, ये एडिटोरियल कमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो म्यांमार को लेकर के थी। आपको मालूम है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो म्यांमार गई थी और वहां उन्होंने वहां के जो सरकार है उसको ये विश्वास दिलाया है कि दो चीजों के लिए देखिए कि एक तो आपको अपने यहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कोई मदद चाहिए, तो भारत उसके लिए तैयार है, और दूसरा उनके जो आर्थिक सामाजिक विकास में जो भी मदद होगी भारत देने को तैयार है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत म्यांमार के साथ हुई है, अब देखते हैं कि स्थिति आगे और कहां तक पहुंचती है। वैसे भारत के लिए म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण देश है, और आपको मालूम है जब आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो म्यांमार से भारत का संबंध रहा है। जो हमारे बहादुर शाह जफर थे वो रंगून की जेल में ही बंद थे, जो म्यांमार में है, जिसका पुराना उस समय आपको म्यांमार शब्द नहीं मिलेगा फ्रीडम मूवमेंट की किताबों में, उस समय उसे बर्मा कहा जाता था। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि लोकमान्य तिलक भी रंगून के ही जेल में कुछ समय के लिए बंदी बनाए गए थे। तो इस तरह के कुछ इवेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मित्रों, जहां तक AIR न्यूज का सवाल है वह बस इतना ही, कुछ विशेष नहीं है। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। खासकर मैं न्यूज़पेपर्स की दो क्लिपिंग का आप लोगों के सामने विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें दोस्तों एक क्लिपिंग है इंडियन एक्सप्रेस की, कल के इंडियन एक्सप्रेस यानी 22 तारीख की क्लिपिंग्स। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो तो केवल मानसून अच्छा हो जाने से ही बात नहीं बनेगी, कि अगर मानसून अच्छा हो गया तो हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे और उनकी आय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो वो नीतिगत परिवर्तन क्या हो सकते हैं उसको लेकर के नीलकांत मिश्र जी ने एक अच्छा लेख लिखा है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। हालांकि है ये इंग्लिश में, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसका संभव हो सका तो मैं आपको हिंदी उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा जो आर्टिकल है मित्रों वो हिंदू का है, ये भी 22 तारीख के ही हिंदू का है, और जो अभी एक छोटा सा विवाद सामने आया था अखबारों के माध्यम से कि जुडिशरी ने गवर्नमेंट से कहा है कि आप जो अपॉइंटमेंट की हमने फाइल भेजी है उसके बारे में जल्दी से डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो हायर कोर्ट है उनके लगभग 45% पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो खासकर इस विवाद का क्या हल हो सकता है उसको लेकर के एक आर्टिकल श्रीराम पंचू ने लिखा है, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो श्रीराम पंचू हैं वो एक सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में। तो ये दो लेख आपके लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूं मित्रों, ये आप देख लेंगे। इसके अतिरिक्त दो तीन और प्रेस क्लिपिंग्स हैं, वो आप देख लेंगे। मित्रों अब मैं आता हूं खासकर जो प्री के एग्जाम हुए हैं 7 अगस्त को आपके जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था कि इस बार के सिविल सर्विस प्री के पेपर में, जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में लगभग 29 तो है ही, उसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो दो तीन और भी बढ़ा सकते हैं, नॉट लेस देन 29 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरी तरह से कॉमन सेंस के आधार पर हल किए जा सकते हैं। मित्रों जो मैं कह रहा हूं कि कॉमन सेंस पर हल किए जा सकते हैं उसका मतलब क्या है, ये कॉमन सेंस क्या है? क्या कॉमन सेंस का मतलब यह हुआ कि बिना पढ़े हल किए जा सकते हैं, या कॉमन सेंस का मतलब यह हुआ कि नहीं, पढ़ाई के आधार पर ही विकसित क्षमता के आधार पर उसे हल किया जा सकता है? मैं इसे पहले बहुत अच्छी तरह से आपको स्पष्ट कर दूं, है ना, कॉमन सेंस का मतलब ये कतई नहीं है, यहां मैं जिस कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, कि आपको उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि केवल पढ़ाई के आधार पर आप इसे हल नहीं कर सकेंगे। हालांकि आपको ये जो मेरी दोनों बातें हैं बड़ी एक दूसरे की विरोधी लग रही होंगी, लेकिन मित्रों ये विरोधी हैं नहीं। देखिए जब हम पढ़ाई की बात करते हैं और स्पेशली जब जनरल स्टडीज के बारे में पढ़ाई की बात करते हैं, तो कितनी पढ़ाई, किस किस की पढ़ाई, कहां तक पढ़ाई, कितना याद रखेंगे, क्या उसकी कोई सीमा है? और सच पूछे तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो पता नहीं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, किस किस तरह की बातें हैं। आपको क्या लगता है मित्रों कि आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको रट सकते हैं? क्या किसी के लिए भी यह संभव है? और उससे भी बड़ी बात यह कि क्या यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इन सबको पर पढ़ें? देखिए ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यूपीएससी आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहा है। ये जो पेपर है, जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है, ये सिर्फ एक माइंड की क्वालिटी को ढूंढने की एक प्रक्रिया है कि एक ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स के लिए उसे किस तरह के मस्तिष्क की जरूरत है, वो उस मस्तिष्क को ढूंढ रहा है, जो मैं बार बार कभी कभी अपने डेली ऑडियो गाइडेंस में दोहराता रहता हूं। तो अगर सब कुछ केवल पढ़ पढ़ करके ही जाना जा सकता है तो उसमें फिर तो मेमोरी की जरूरत हो गई, फिर पढ़ाई की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत नहीं हुई, फिर उसमें क्वालिटी ऑफ माइंड की बात नहीं आई, उसमें तो फिर क्वालिटी ऑफ मेमोरी की बात आई, कि हार्ड लेबर की बात आई, कि कौन कितनी ज्यादा पढ़ सकता है, कितनी ज्यादा मेहनत कर सकता है, कितना ज्यादा रट सकता है और उसको रटे रख सकता है। क्योंकि यूपीएससी बहुत अच्छे से जानती है कि जो उसने 100 प्रश्न आपको प्री में दिए हैं, इसमें से किसी भी प्रश्न की जरूरत जब आप जिस दिन सर्विस में आ जाएंगे और काम करने लगेंगे नहीं पड़ेगी। लेकिन वो ये भी मान करके चलता है कि इसके माध्यम से ही वो इस बात की तलाश कर सकता है कि जिस दिमाग की जरूरत पड़ेगी वह कैसा होना चाहिए और उसको तलाशने के लिए इस तरह के प्रश्न बनाए जाने चाहिए। तो मित्रों, जब मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना पढ़े कॉमन सेंस विकसित नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है क्या? पढ़ाई के बाद उसका बोध के स्तर पर पहुंचना कॉमन सेंस है। पढ़ाई को रट लेना, रटने के स्तर तक सीमित रह जाना, वो ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान है, सूचना है। वो तो सच पूछे तो सूचना है, ज्ञान भी मैं नहीं कहता। ज्ञान तो सूचना के बाद थोड़ा सा आगे होता है और बोध तो शायद सर्वोत्तम स्तर है। तो चलिए हम बोध की बात न भी करें कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पढ़ने के बाद आपने समझा क्या है और क्या उसके आधार पर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, और वो जो अनुमान होगा वो परफेक्ट अनुमान होगा, ये नहीं कि अनुमानतः अनुमान होगा। हालांकि उसके लिए दंड की जो व्यवस्था की गई है 0.33% ही है, अनुमान लगाने की आपको इतनी छूट दी गई है कि चलिए आप कम से कम आपने अनुमान लगाने की हिम्मत तो की। तो दोस्तों, यूपीएससी खुद ये मानकर चलती है कि आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो कॉमन सेंस पर आधारित है पढ़कर नहीं दे सकते। इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए और कॉमन सेंस आप पढ़कर विकसित कर सकते हैं, समझ कर विकसित कर सकते हैं। सच पूछिए तो मैं अपने ही वाक्य को सुधारना चाहूंगा, आप पढ़कर विकसित नहीं कर सकते, समझ कर विकसित कर सकते हैं। और उसके लिए जो यूपीएससी आपको ऑप्शन देती है, जो विकल्प देती है, उसमें आपकी मदद भी करती है, वो बकायदे आपकी मदद करती है, बशर्ते कि आप उस मदद को समझ तो सके। वो समझ में नहीं आती वो मदद, क्योंकि हमारे दिमाग में पढ़ाई 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 इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा भरा हुआ है कि अगर हमको लगता है कि अरे हमने ये नहीं पढ़ा है तो अब इसका उत्तर हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल गया, लगता है जैसे हम मैच हार गए। मित्रों, मैं आपको केवल एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, शायद मेरी बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। ये मैं आपको क्वेश्चन, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वो सेट वन है और मैं सेट वन का जो क्वेश्चन नंबर जो दे रहा हूं वो है 23। जिन स्टूडेंट के पास सेट बी होगा उसमें ये क्वेश्चन है 48, जिनके पास सेट सी होगा उनके पास उनका क्वेश्चन नंबर है 73 और जिनके पास सेट डी होगा उनका ये नंबर है 98। आप इसे देख सकते हैं और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ब्रैकेट में इंग्लिश में दिया हुआ है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद तीन विशेषताएं दी हैं, नंबर एक नदी बेसिन कॉमा योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, दूसरा यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, तीसरा NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। मित्रों, ये क्वेश्चन है और इसके बाद चार कूट दिए हुए हैं, केवल एक दो तीन, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसको आप अपने उसमें इस जब आप ऑडियो को सुनेंगे तो उससे मैच कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी तो उससे कोई बात बनेगी नहीं। मैं कुछ स्टूडेंट्स की सहूलियत की दृष्टि से इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नंबर वन रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. सेकेंड, इट स्प्रेड स्पेयर हेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल. थर्ड, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम द चेयरमैन ऑफ NGRBA ऑन रोटेशन बेसिस. इसके बाद चार विकल्प दिए हुए हैं. दोस्तों, जब जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट, खासकर जो साइंस के हैं या जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको सीधे सीधे बता दें, उन्होंने इसके बारे में पढ़ रखा हो. और जो नहीं कर रहे हैं इन्हीं एग्जाम की तैयारी, हो सकता है उसमें से कुछ ने पढ़ रखा हो, कभी उनके ध्यान में ये बात गई हो. लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा, और यूपीएससी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझती है. अब आप देखिए, जो मजेदार बात है कि उसने जो विकल्प दिए हुए हैं उस विकल्प में आपकी कितनी मदद करने की कोशिश की है. लेकिन वही है कि मैं डूब रहा हूं बाढ़ में और ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है और हेलीकॉप्टर ने एक रस्सी भी लटका रखी है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि अरे देखो, हेलीकॉप्टर की रस्सी नीचे गिर रही है, वो लटक गई है, हेलीकॉप्टर वाले कितने बेवकूफ हैं, अपनी रस्सी भी नहीं संभाल सकते. और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो रस्सी नीचे लटक रही है ये मेरे लिए लटक रही है कि तुम इसको पकड़ो, हम तुमको ऊपर खींच लेंगे. तो हम दूसरों को समझने लगते हैं, दोष देने लगते हैं, खुद उससे मदद नहीं हासिल कर पाते. कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति बन जाती है. यहां जो हेलीकॉप्टर ने रस्सी आपको बचाने के लिए लटका रखी है मित्रों, उसमें देखिए कि जितने भी ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन आप देखिए, उन चार ऑप्शन में एक को छोड़कर बाकी तीनों जो ऑप्शन है उन सभी में थ्री को दिया हुआ है, थर्ड डाला हुआ है, थर्ड उसमें शामिल है. और थर्ड ऑप्शन क्या है कि इसका जो अध्यक्ष है वो क्रम से उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है. ठीक है, तो यहां तो आपको फंसाने के लिए दे दिया, उसने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं दिया है कि जिनसे गंगा होकर बहती है उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं. और चूंकि ये गंगा का बेसिन है, गंगा का प्राधिकरण है, तो उसने आपको एक थोड़ा सा मूर्ख बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपकी मदद भी की है. अब यह देखना है कि उसमें से भारी कौन पड़ रहा है. आप देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, दोस्तों ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल जैसा है, है ना, ये इसके पास कुछ न्यायिक अधिकार भी हैं. अब बहुत ही सिंपल सी सोचने की बात है कि जो प्राधिकरण होगा, एक तो प्राधिकरण जैसी चीज, मतलब एक छोटी सी चीज, अगर उस रूप में देखें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कद को देखते हुए, प्राधिकरण एक छोटी चीज होती है उनके कद को और उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए, नंबर एक, यहां कॉमन सेंस यूज होगा. दूसरा, इस प्राधिकरण के पास कुछ जुडिशरी पावर्स भी होते हैं, डिसीजन देने के, सुनवाई करने के. तो ऐसे प्राधिकरण का हेड चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि दो राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसमें से एक राज्य का चीफ मिनिस्टर उस समय प्राधिकरण का अध्यक्ष है, तो कैसे फैसला करेगा? तो आपको नहीं लगता कि यहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है? तो सीधी सी बात है कि आपको नहीं मालूम है कि कौन होता है. मैं मानता हूं, चलिए, मुझे भी नहीं मालूम कौन होता है. कोई जुडिशरी का आदमी होता है, आईएएस अफसर को बिठा देते हैं या इंजीनियर्स को बिठा देते, कौन होता है मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम. लेकिन अगर आपके पास इतना कॉमन सेंस है कि जो अथॉरिटी इस तरह की होती है, कम से कम चीफ मिनिस्टर तो उसके अध्यक्ष नहीं होंगे, केवल इस कॉमन सेंस के आधार पर आप जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को हटा सकते हैं. क्योंकि तीनों में आप देखिए कि थर्ड ऑप्शन आपकी मदद के लिए दे रखा है. क्योंकि यदि किसी में थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो आप उन दो में फंस जाते. तो अगर आपको एक तथ्य मालूम है कि चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है, तब फिर बच जाता है ए, और आप इसमें निशान लगा देंगे, भले ही आपने इसे पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा. यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो ट्रिब्यूनल्स के या अथॉरिटी के जो करेक्टर्स होते हैं, उसका जो बेसिक होता है, उसका जो मूलभूत चरित्र होता है, केवल उसके मूलभूत चरित्र को पकड़ना है. नॉन पॉलिटिकल इसका जो चरित्र होता है, नॉन पॉलिटिकल, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जुडिशरी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है. बस अगर आप इतना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। और मित्रों ऐसे प्रश्न एक दो नहीं बल्कि 29 क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। आप क्या संख्या होती है 29 की आप कल्पना कर सकते हैं। और मजेदार बात यह कि अगर इस कॉमन सेंस हमारे पास इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है तो पढ़कर हम उन्हें हल नहीं कर सकते, ये बहुत ही लगभग असंभव सा हो जाता है। और मित्रों इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, उनके रट्टा मारने के चक्कर में मत पड़िए, कंटेंट पर ज्यादा मत जाइए, आप उनके बेसिक्स को समझिए, उसके मूलभूत चरित्र को समझिए। और कुल मिलाकर के मित्रों यहां जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं उसमें जो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके इसी मूलभूत चरित्र को पकड़कर समझाने की कोशिश होती है कि आप कैसे उन पर अपनी पकड़ बनाए। तो मित्रों ये एक इसके चरित्र जो आपके प्री के एग्जाम का जो पेपर मेरे सामने है उसके एक चरित्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, कुछ बातें हम थोड़ी सी आगे चलकर और भी करेंगे। तो मित्रों अब थोड़ा सा समय लाइफ मैनेजमेंट को, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट के लिए थोड़ा समय कम निकल पा रहा है, चीजें उसमें ज्यादा हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी चीजें हैं आप लोगों के लिए ही हैं, आप लोगों को ही समर्पित है। लाइफ मैनेजमेंट में मित्रों मैं थोड़े से स्पोर्ट्स के बारे में बात करूंगा, जैसा कि मैंने कल भी बात की थी। दोस्तों जब कोई खेल में इस तरह से नाम कमाता है तो हम सब बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और लगता है काश इसकी जगह हम भी होते, और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगना बहुत अच्छी बात है, मतलब हम कम से कम इससे इस बात को तो प्रूव करते हैं कि अच्छाई के प्रति हमारा आकर्षण है, और जब अच्छाई के प्रति आकर्षण है तो कुछ ना कुछ तो फिर हमारे अंदर वो चीज आएगी ही। मित्रों मैं चाहूंगा कि आप किसी खिलाड़ी के जीवन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मतलब मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स गर्ल जितनी मेहनत करती है उतना दूसरा कोई नहीं करता। चार चीजें उनके जीवन के स्तंभ बन जाती हैं, इसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नंबर एक डिसिप्लिन, बहुत ही गजब का डिसिप्लिन। मित्रों मैं चाहूंगा कि आप, मैंने जो एक ब्लॉग लिखा है द्रोणाचार्य और अर्जुन, मतलब बैडमिंटन के कौन द्रोणाचार्य और अर्जुन है, पुलेला गोपीचंद और पीवी संधु के ट्रेनिंग के सिस्टम को लेकर के, और उसे आप अगर हो सके तो एनडीटीवी पर वो अवेलेबल है, उसे आप जरूर पढ़ें। आप देखेंगे कि पीवी संधु को कितने जबरदस्त अनुशासन में रखा गया है। उनको चॉकलेट बहुत पसंद है, बैन, चावल बैन, बाहर का पानी पीना बैन, रोज सुबह 4 बजे एकेडमी पहुंचना है, और सब मजेदार बात है कि 3:30 बजे खुद वहां गोपीचंद पुलेला मौजूद होते थे, और फिर 3 घंटे लगातार प्रैक्टिस, और जो डिसिप्लिन है उसको तो आप कह ही नहीं सकते। खुद पीवी संधु ने कहा कि एक एक शब्द, जो मेरे गोपीचंद जो मेरे कोच है उनके एक एक शब्द का मैं ब्लाइंडली उनको फॉलो करती हूं, नो डाउट, नो कोई वो नहीं, जो कह रहे हैं उसे मैं मान रही हूं, और आज आपको उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। सेक्रीफाइस, अनुशासन के बाद मित्रों त्याग, कितना बड़ा त्याग करते हैं उस उम्र में, जबकि लोगों के रंग सब पता नहीं कितने रंगीन सपने होते हैं, कितने रंगीन सपने होते हैं। हम पिक्चर देखेंगे, मॉल में घूमेंगे, दोस्तों के साथ गप मारेंगे, पर्यटन पर जाएंगे, खेलेंगे, कॉफी कैफे कॉफी डे होम में बैठ के चाय कॉफी पी, पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं। आप देखते हैं कि वो अपने सारे सपनों को केवल एक खेल के सपनों में डुबो देते हैं, वो रंग इतना भारी पड़ जाता है कि बाकी कोई रंग उन्हें नजर ही नहीं आता। आपको क्या लगता है कि एक छोटा सा त्याग है? और केवल त्याग वही नहीं करते, उनका परिवार भी त्याग करता है, क्योंकि परिवार भी उनके साथ जुड़ा रहता है, परिवार भी अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहता है। तो दोस्तों उस त्याग के बारे में थोड़ा सोचिएगा। और इसके बाद हार्ड लेबर, कोई भी खिलाड़ी एक ऐसा नहीं होता मित्रों, कोई भी किसी भी खेल का खिलाड़ी जो एक दिन में 6 घंटे शारीरिक श्रम न करता हो, टोटल मैं बता रहा हूं, जिसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर के डाइट पर कंट्रोल और फिर प्रैक्टिस, ये 3 चीजें उनके स्तंभ बन जाते हैं। हार्ड लेबर उनका जाकर के देखिए तो आंखों में पानी आ जाएगा कि बाप रे बाप, कितनी मेहनत करते हैं, और इसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, कि ज्यादातर का तो नहीं ही होता है। और फिर दोस्तों लगन तो होती ही है, कंसंट्रेशन और लगन, ये 4 चीजें हैं जो उन्हें एक ऊंचाई के स्तर तक पहुंचाती है। और मित्रों मुझे लगता है कि यही 4 चीजें हैं जो किसी भी फील्ड में आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है, खेल की ही बात नहीं है। आप किस में देखेंगे, हर जगह आपको एक डायरेक्ट काम करने की जरूरत होती है। जैसे खेल, अगर मान लीजिए कि पीवी संधु बैडमिंटन खेल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 6 घंटे सिर्फ बैडमिंटन ही खेलती रहती हैं? उसमें से आधा वक्त वो केवल अपने फिजिकल फिटनेस पर लगाती होंगी, शरीर की लोचकता को बनाए रखना है और फलाना और फलाना और पता नहीं क्या क्या, मतलब वो इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट बैडमिंटन बट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट को मदद करती है। और मित्रों, हम इस बात को नहीं समझ पाते, इस बात को हम नहीं समझ पाते जिंदगी में। जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूं और मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये बिजनेस आगे बढ़े, तो मैं क्या करूंगा? तो क्या वो सिर्फ बिजनेस के माध्यम से ही वो बढ़ सकता है? बिजनेस के माध्यम से वो नहीं बढ़ेगा, मुझे उसके इनडायरेक्ट उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और क्या होगा कि मैं अपनी स्टडी को बढ़ाऊं, मैं अपने बिजनेस से संबंधित जो अध्ययन के क्षेत्र हैं, जो मैनेजमेंट के क्षेत्र हैं, जो नया कुछ दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में पढ़ूं। वॉरेन बफे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आज दुनिया के तीसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं, और मतलब कितने छोटे से लेकर के वो आगे बढ़े हैं और आज पूरी दुनिया के वो आइकॉन बने हुए हैं। उनसे एक बार लोगों ने पूछा गया था कि आप अपनी सफलता के लिए इतना बड़ी बड़ी आपने कंपनी खड़ी कर दी, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि पढ़ो, खूब पढ़ो। अब आप कहेंगे कि उस पढ़ाई लिखाई का बिजनेस से क्या संबंध? ये ठीक उसी तरह से है कि बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी का भला ये कसरत करने से क्या संबंध? ये कुछ उसी तरह की बात है दोस्तों, वेट लिफ्टिंग से क्या संबंध? जो इनडायरेक्ट जरूरत है उनके बारे में सोचिए, ये जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में क्या चाहिए, जिसकी मैंने आज कॉमन सेंस के बारे में बात की है। वो कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा? वो कॉमन सेंस किताबों से डेवलप नहीं होगा, किताबों को पढ़ने के बाद उस पर सोचने से डेवलप होगा, उसको अप्लाई करने से डेवलप होगा, चिंतन मनन से होगा, डिस्कशन से होगा, सोसाइटी को आप देखेंगे तब होगा, इंटरेक्शन करेंगे तब होगा। वो इनडायरेक्ट प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की। दोस्तों, आप नौकरी करते हैं, जो बता दिया गया है वो कर रहे हैं, मुझे जो कह दिया गया है मैं वो कर रहा हूं, ठीक है, समय आने पर तरक्की हो जाएगी, इंक्रीमेंट लग जाएगा, वो सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन मुझे मेडल कब मिलेगा? मेडल तब मिलेगा जब मैं उस नौकरी के संस्थान में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करूं। और कंट्रीब्यूशन क्या है? नौकरी करना कंट्रीब्यूशन नहीं है। नौकरी करने का तो मतलब है कि जो मशीनरी चल रही है उसको, उसके चलाने में बस मैं भी लगा हुआ हूं। कंट्रीब्यूशन का है कि अलग से मैंने क्या किया जिसे मैनेजमेंट पहचाने, लोगों के ध्यान में आए, उसे हम कंट्रीब्यूशन मानते हैं। जैसे अगर आप सिविल सर्वेंट भी बनेंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कलेक्ट्री करके आ जाना कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन है कि आपने नया उस क्षेत्र में क्या लागू किया जिसे कि दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो नौकरी में कर रहा हूं, मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचूं। जब मैं कुछ नया सोचूंगा, इनोवेशन करूंगा, तब मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, तब फिर मुझे उस नौकरी में तरक्की मिलेगी। किसी में चले जाइए, आप खेती किसानी कर रहे हैं तो जो जमीन है, जो कुछ बोते चले आ रहे हैं, बोते चले जाइए। हमारे दिमाग में यही जाएगा यार कि सिंचाई की सुविधा नहीं है तो सिंचाई इसमें उसकी सुविधा प्रोवाइड कर दो। लेकिन अगर उसी एग्रीकल्चर में आपको आगे बहुत बढ़ना है तो आपको फिर एक खिलाड़ी के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इसमें और नई चीज क्या पैदा की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। और उसकी जानकारी फिर आपको स्टडी से मिलेगी, इनोवेशन से मिलेगी और अलग अलग चीजों से मिलेगी, और इन चीजों का सीधा कोई संबंध खेती से नहीं है। तो मित्रों, मैं केवल ये जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि हम जो भी काम करते हैं जिंदगी में वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस पेरिफेरी, उस परिधि से बाहर कुछ उन कामों के बारे में भी सोचें जो सीधे तो इसमें करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन सच पूछे तो वो इसे बहुत एनरिच करते हैं, इसे बहुत समृद्ध करते हैं और हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं और अंत में अब आता हूं मेल पर। सभी मेल लिखने वाले अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक मेल आया है राहुल कुमार का, जो औरंगाबाद बिहार से हैं। उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बहुत से अपने दोस्तों को बताते हैं और इसका उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो राहुल, इसके लिए मैं अकेडमी की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, इस मेल लिखने वाले कुछ दोस्तों के नाम मैं ले रहा हूं। वेंकटेश पटेल मुखर्जी नगर दिल्ली से हैं, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, अमित कुमार गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं और विवान अवस्थी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।